In progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، زدنا علما. تو یہ رمضان المبارک کے دروس قرآن کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر ہی بدستور پڑھ رہے ہیں، جو ہماری خواتین کی سارا سال جو کلاسز ہفتے میں ایک دن درس قرآن کی جاری رہتی ہیں، تو ان میں بھی درس یہ سورہ انعام ہی پچھلے شوال سے چل رہی ہے، اور رمضان المبارک میں یہ روزانہ کے حساب سے شروع ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق سے. تو اس میں جو ہے وہ ہم آیت نمبر 82 سے لے کر کے 89 تک کے مجموعے یعنی گروپ آف آیات تک پہنچ گئے تھے، اور ان کے معارف و مسائل کل ہم نے پڑھنے شروع کر دیے تھے. تو اس میں جو ہے وہ ہم پیج نمبر 387 جو کتاب کا پیج نمبر ہے، پھر آپ کے سامنے سکرین کے اوپر بھی شیئرڈ ہے، تو وہاں سے ہم آج کنٹینیو کرتے ہیں پڑھنا کہ جو یہ سب فرمایا پیچھے، یعنی یہ تفسیر میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ عنہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد اور ان کی جو قوم تھی اس کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا، جو ڈسکشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ان سب کی تمہید مانتے ہوئے فرمایا تھا کہ عذاب سے مامون و مطمئن صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کر کے پھر آگے فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، دریاؤں کو پوجنے والی مخلوق اپنی بے وقوفی سے ان چیزوں کو با اختیار سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی تو مخلوق ہے، تو انسان بھی تو مخلوق ہے، تو جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کو پوج رہی ہے تو یہ اس کے وقوفی کا بے ہے، یعنی بے وقوفی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ ٹھہر نہیں رہا حقیقت کے اوپر، اس وجہ سے اس کو بے وقوفی، وقوف کا مطلب ہوتا ہے نا ٹھہرنا، تو نہ ٹھہرنا یعنی عجیب عجیب. آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات دل میں ابھی ابھی ڈالی کہ بے وقوفی کو بے وقوفی کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بے وقوفی کو بے وقوفی، کہ جو ٹھہر نہ سکتا ہو نا تو وہ پھر کیا رہے گا، وہ ہر وقت جو ہے وہ پلٹتا الٹتا، ہر وقت جو ہے وہ منتشر مزاجی جس کو کہتے ہیں، منتشر مزاجی یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، ڈسٹریکٹڈ. ٹھیک ہے، ڈسٹریکٹڈ بھی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں نا، تو ڈسٹریکشن جو ہے دس کازز واٹ، بے وقوفی. ٹھیک ہے، یعنی ایسا شخص جو ہوتا ہے جو کہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کو سن رہا کبھی اس کو سن رہا، کبھی اس کو دیکھ رہا کبھی اس کو دیکھ رہا، کبھی کچھ کر رہا کبھی کچھ کر رہا کبھی کچھ کر رہا، رائٹ؟ تو اب اس کی عقل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. इसकी अकल खराब हो जाती है या यानी बेवकूफी की बातें करना शुरू कर देता है ये। तो बेवकूफ नतीजा क्या हुआ, किस चीज का नतीजा हुई, डिस्ट्रैक्शन। माशाल्लाह जो अल्फाज भी है ना उर्दू जबान में भी बहुत ही गहराई होती है, जो अरबी से अल्फाज आए कम से कम उर्दू के अंदर उन अल्फाज में बड़ी गहराई होती है, ठीक है। तो अरबी की अपनी गहराई अलग, फिर उसके बाद उर्दू में आकर के उसके अंदर मजीद गहराई ऐड हो जाती है गोया के, ठीक है। तो बेवकूफी, ठीक है। तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने बेवकूफी का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, कि जो मखलूक दूसरी मखलूक को पूछ रही है तो वो तो अजीब बेवकूफी का शिकार है। और उनकी इबादत छोड़ने से इसलिए डरती है कि कहीं ये चीजें हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, ठीक है। यानी खुद तो वैसे छोड़ने का कोई मूड नहीं होता कि भाई ऐसे बैठे बैठाए कर जो है वो छोड़ दें इबादत उनकी, नहीं। बल्कि जब कोई नबी आता है बताता है या नबी का कोई नुमाइंदा आकर के उनको छोड़ने के लिए कहता है तो डर के मारे नहीं छोड़ती। क्यों नहीं डर के? इसलिए कि नबी जो है वो उसको दलाइल से वाजह कर देता है कि ये तुम बेवकूफी कर रहे हो, ये तो तुम्हें इनकी इबादत नहीं करनी चाहिए, ये तो इबादत लायक ही नहीं है। अब वो छोड़ना चाहते भी है ना, क्योंकि अब दलाइल से वो कन्विंस तो हो गए, ठीक है, क्योंकि नबी तो हुज्जत तमाम कर देता है ना। नबी जो है वो उल्टी सीधी बातें बेवकूफी की बातें तो नहीं करता ना नबी। नबी तो बिल्कुल अकली दलाइल देता है, अकली दलाइल जो कि अकल जिसका इनकार कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब इनके सामने दलाइल जो है वो हो गए, हुज्जत तमाम हो गई, अब तो छोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों नहीं छोड़ते? खौफ की वजह से नहीं छोड़ते कि ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक है। तो नबियों का ये काम होता है और नबियों के जो वारिस हैं उनका भी यही काम होता है कि अकली दलाइल के जरिए से बात को वाजह करो। अब अकली दलाइल जो होता है ना वो मैथमेटिकल होना जरूरी नहीं है, उनको अकली दलाइल जो है वो प्योर लॉजिकल भी होते हैं कि भाई जब ये तुम बात मानते हो और फिर वो बात भी तुम मानते हो तो फिर ये तीसरी बात क्यों नहीं मानते हो। जैसे नबी अलैहि सलाम ने अकली दलील की बुनियाद पर बात करी थी, अकली दलील 100% अकली दलील, कि जब तुम मुझे सादिक और अमीन मानते हो और मैं तुम्हें अगर ये कहूं कि पीछे से एक कौम तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा जी आपकी बात मानेंगे क्योंकि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, ठीक है ना। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर मेरी इस बात को भी मान लो ना कि मरने के बाद तुमने जिंदा होना है, तुम्हारे अमाल का हिसाब होगा, इस बात को क्यों नहीं मानते? तो ये क्या है, ये कोई नकली दलील है? नहीं, ये नकली दलील नहीं है। नकली दलील का मतलब फेक नहीं मतलब, बल्कि दूसरी किस्म की दलील जो अकली नहीं होती वो नकली होती है। वो नकली क्यों होती है? क्योंकि आप वो भी एक अकली दलील ही होती है असल में, कि अगर तुम कुरान मजीद को मानते हो तो फिर कुरान मजीद की इस वाली आयत को क्यों नहीं मानते? तो ये कुरान मजीद से नकल करके आप एक आयत बतौर दलील के पेश कर रहे होते हैं किस शख्स के सामने, जो ओवरऑल कुरान को सच्चा कह रहा होता है, ओवरऑल कुरान को जो कह रहा होता है कि भाई हाँ कुरान सच है, अल्लाह की किताब है। तो फिर इस बुनियाद पर अब आप उसको कुरान मजीद की कोई आयत दिखाते हैं कि भाई ये आयत भी तो कुरान मजीद के अंदर ही ना जिसको तुम मानते हो, तो तुम इस आयत को क्यों नहीं मान रहे? ये भी एक अकली दलील ही है। नबी अलैहिस्सलाम को सच्चा मानते हो, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हो, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की इस बात को क्यों नहीं मानते? ये भी तो अकली दलील ही है ना, राइट। उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जात को अकली दलील के तौर पर पेश किया, जब तुम मेरी सारी बातें मानते हो तो इस वाली बात को क्यों नहीं मानते? लेकिन नहीं माना उन्होंने, किस वजह से? जिद की वजह से। उनको अपनी चौधराहट अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आ रही थी कि फिर तो हमें इनकी बाकी सारी बातें भी माननी पड़ जाएंगी, फिर तो हमें जो है वो अपनी जो हम नफ्स परस्ती है, जो अपनी ख्वाहिश परस्ती है उसको छोड़ना पड़ जाएगा, वो हम नहीं कर सकते। उधर ही उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी शुरू कर दी, ठीक है। तो नबी जो है ना वो अकली दलील से हुज्जत को तमाम कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्यों नहीं छोड़ते? खौफ की वजह से नहीं छोड़ते या जिद की वजह से नहीं छोड़ते? इन लोगों ने जो है वो खौफ की वजह से नहीं छोड़ा होगा, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा कि भाई डरती है कि ये छोड़ने से क्यों डरते हैं कि ये चीज़ हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत खलील खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम ने गुर की बात उनको बतलाई कि खुदाए कुद्दूस जो तुम्हारे हर काम से बाखबर भी है और तुम्हारे हर भले बुरे पर पूरी तरह कादिर भी है, उससे तो तुम डरते नहीं हो, ठीक है। क्या मतलब? ये नहीं कि मैं कहता हूं कि खुदा कादिर है,
ठीक है, बल्कि तुम खुद भी कहते हो कि खुदा तो वो है जो कि कादिर हो, ठीक है, जो कि हर भले पर भी कादिर हो, जो हर बुरे पर भी कादिर हो, तुम ये बात मानते हो ना? उन्होंने कहा जी, क्योंकि वो ये बात मानते थे। ठीक है, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसका लॉजिकल कंक्लूजन डिराइव किया, वो क्या कि जब तुम मानते हो कि खुदा कादिर है तो तुम उससे क्यों नहीं डरते हो? ये भी तो लॉजिकल दलील ही है ना, ये भी तो अकली दलील ही है ना कि जब तुम मानते हो कि वो कादिर है तो तुम उससे डरते क्यों नहीं हो? ठीक है, कि उसकी खिलाफ वर्जी करने से कोई मुसीबत आ जाएगी, उसका हुक्म ना मानने से मुसीबत आएगी, राइट, उसका हुक्म ना मानने से मुसीबत आएगी, और जिन चीजों में ना इल्म है ना कुदरत, उनसे ऐसे डरते हो तुम कि अगर तुमने उनकी इबादत छोड़ दी तो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, हालांकि तुम इस बात को मानते हो कि उनके अंदर कुदरत नहीं है, वो मक्खी नहीं उड़ा सकते अपने ऊपर से, राइट, उनके ऊपर गर्द अगर अट जाए तो वो गर्द पोंछ नहीं सकते ऊपर अपने अपने ऊपर से, मानते हो तुम इस बात को, लेकिन तुम उनसे डर रहे हो, ठीक है ना? तो ये तो कितना आसान था ना, इन बुतों के खिलाफ हुज्जत पूरी कर देना, एक आम आदमी को भी ये बात समझा देना कितना आसान काम था कि भाई तुम देख नहीं रहे हो कि ये तो अपने ऊपर है, चूहा आ जाए इनके ऊपर बैठ जा करके, चूहे को नहीं धक्का दे सकते अपने ऊपर से। तो फरमाया कि ये सिवाय बेअकली के और क्या है, डरना सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए, और जिसका उस पर ईमान हो वो किसी खतरे में नहीं है, जिसका अल्लाह पर ईमान हो यानी अल्लाह कादर मुतलक है, ठीक है, जिसका अल्लाह पर ऐसा ईमान हो जैसे कि वाकई वाकई अल्लाह है, अल्लाह को वैसा मानते हो, तो फिर वो तो किसी खतरे में नहीं है ना भाई, ये भी तो एक लॉजिकल दलील है ना, ठीक है, कि अल्लाह को जब मानते हो कि भाई वो हर चीज पर कादर है, तो जब तुम अल्लाह की भी मान रहे हो, अल्लाह की हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हो, तो फिर तो तुम्हें खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा, या नई बात समझ में आई तो भी बता दिया, कभी नहीं मुझे इतनी समझ में आ रही है वाली बात, फिर दोबारा कोशिश कर लेंगे, या थोड़ी डांट वांट आपको देंगे, वरना और क्या कर लेंगे दादा साहब, ठीक है, तुम परेशान होने की इन एनी केस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चले आगे चलते हैं फिर। तो फरमाते हैं कि इस आयत में वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, फरमाया, ठीक है, तो इसमें जो है ना, यानी जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ मिक्स नहीं किया, ठीक है, शेक नहीं, वो जिस तरह हम चीनी डालते हैं ना किसी पानी के अंदर या किसी चीज के, जैसे दही में, माशाल्लाह हमारे दोस्त बैठे हुए थे हमारे सामने, तो वो दुक्का दुक्का जो है ना, वो मदीना मुनव्वरा में जो अफ्तार बढ़ता है ना, तो उसमें वो एक ब्रेड देते हैं खाने के लिए, और एक जो है वो दही का प्याला देते हैं, और साथ एक मसाला टाइप की चीज होती है उनकी जिसको दुक्का कहते हैं, दुक्का, तो उन्होंने दुक्का जो है ना वो दही के अंदर डाला, दही के प्याले में, और चूंकि चम्मच नहीं था उस वक्त उनके पास, उन्होंने अपनी उंगली से उसको चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो अब जब वो चला दिया ना उन्होंने अच्छी तरीके से, तो दुक्का जो है ना, दुक्का मसाला, वो दही के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया, ठीक है, तो यलबिसू, उन्होंने यलबिसू का काम कर दिया उसके साथ, तो ये वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन फरमाया। तो अब हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, देखें इसको कहते हैं इल्म, ठीक है, क्या जबरदस्त बात करी है इन्होंने, आगे फरमाते हैं कि इसमें जुल्म से तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसरीह के मवाफिक शिर्क मुराद है, नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया सहाबा को, सहाबा को समझ में नहीं आई थी बात, हालांकि अरब दान थे, अरबी बोलते थे, अरबी में शायर व शायरी भी करते थे, और उनके जद्दी पुश्ती जो है वो अरबी जुबान, आदम अलैहिस्सलाम से इनके पास अरबी जुबान पहुंची थी, क्योंकि अरबी जुबान तो आदम अलैहिस्सलाम की जुबान अरबी जुबान थी, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने गुनाहों की वजह से अरबी जुबान को कुछ लोगों से छीन लिया था, तो हर जगह फिर अरबी जुबान बाकी नहीं रही थी, फिर दूसरी जुबानें शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ जगहों पे अरबी जुबान बाकी रही थी, तो ये उन लोगों में से थे, यानी ये उनकी आबाव उनकी नस्लों में से थे जहां पे अरबी जुबान बाकी रही थी, ऐसे अरब दानों को भी बात समझ में नहीं आई क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं था इनके पास, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने तसरीह फरमा दी, सराहतन बिल्कुल एक्सप्लिसिटली बता दिया कि यहाँ पे मुराद शिर्क है, आम गुनाह मुराद नहीं है, ठीक है, आम गुनाह क्या होता है कि अल्लाह ताला के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई, लेकिन उसूलन इनकार नहीं कर रहे कि ये जो मैंने काम किया है ना ये गुनाह है ही नहीं, अगर ये कह दिया कि ये गुनाह है ही नहीं, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था कि ये गुनाह है, तो फिर ये क्या हो गया? ये कुफर हो गया, ये कुफर हो गया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये गुनाह है और ये कह रहा है कि नहीं ये तो गुनाह है ही नहीं, ये तो अच्छा नेकी का काम है, ये कुफर हो गया। यही बात कल हुई थी, कल क्लास के आखिर में जो बात हुई थी ना, उम्मीद है कि आप सबने सुनी होगी और समझी होगी, और उम्मीद है कि आप दूसरों को भी समझाएंगे ये वाली बात, क्योंकि आज के दौर में इसी तरीके से बात समझाने की जरूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक बात का भी इनकार नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जात को नाउज़ु बिल्लाह झूठा करार देना है, पूरी जात, पूरे यानी आप सतम की पूरी रिसालत के जो मामलात है ना, सबको पूरा झूठा करार दे देना है, एक बात को झूठा करार दे देना नबी अलैहिस्सलाम की, ठीक है? क्योंकि सच्चा तो वही होता है जो 100% सच्चा होता है, 99% सच्चा सच्चा नहीं होता, एक झूठ बोलने वाला भी जो है ना वो सच्चा नहीं हो सकता, वो झूठा होता है। आपने नबी अलैहिस्सलाम की एक बात को अगर झूठा कह दिया तो उसका मतलब है कि आपने नबी अलैहिस्सलाम के पूरे हस्ती को जो है वो झूठा कह दिया, इसी को तो कुफर कहते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला सारे अमाल को जीरो कर देते हैं, हबित अमलहू कर देते हैं इस मामले में, ठीक है? जब कोई ऐसा करता है तो गुनाह करना इससे कोई काफिर नहीं हो जाता, लेकिन गुनाह का इनकार कर देना कि नहीं ये गुनाह है ही नहीं, इससे काफिर हो जाता है, ठीक है? और ये गुनाह भी जो है ना फिर वो जो कि यानी सही हदीस से या मुतवातर हदीस से या मशहूर हदीस से जो गुनाह साबित होता है, ऐसे का जो है वो इनकार कर देना इंसान को कुफर का शिकार कर देता है। अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने कि ये मानने वाली चीज हालात पर भी अप्लाई होती है ना, कि हालत के खिलाफ जाकर के अल्लाह की मानना, हालात के खिलाफ जाकर के अल्लाह की मानना। जी जी बिल्कुल, ये जाहिर जाहिर सी बात है, मतलब अल्लाह की मानना हर हालात में मानना है, और हालात अगर मुखालिफ हैं और हालात जो है वो मुश्किल हैं तो भी अल्लाह की मानना, अल्लाह की ये भी थोड़ी कि अच्छे हालात होंगे तब अल्लाह की मानूंगी और बुरे हालात होंगे तो अल्लाह की नहीं मानूंगी, फिर किसी और की मान लूंगी, ठीक है? जाहिर है अल्लाह की हर हालत में, और हालात होते भी अल्लाह ही की तरफ से सारे के सारे। अच्छा, तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने तस्रीह के मुआफिक शिर्क मुराद है, आम गुना मुराद नहीं है, लेकिन ये लेकिन जो है ना ये बहुत जबरदस्त लेकिन है ये, ठीक है? सूरह लुकमान में न शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, वो अजीम जुल्म है, तो आम गुना इसमें मुराद, तो लेकिन बड़ा खतरनाक लेकिन है। फिर इसके बाद आगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने कि हजरत सराहतन झूठा नहीं बोलते लोग, लेकिन ये बोलते हैं कि जिसने ये हदीस बताई है, जिसने तफसीर लिखी है, उसने सही नहीं लिखी है, ठीक है? जिसने हदीस बताई है उसने जो है वो गलत हदीस बताई है। मुझे पता है कि लोग क्या बोलते हैं, या आप नई बातें बता रही हैं हमें, ठीक है? लेकिन किसी प्रोविन हदीस को कह देना कि ये हदीस नहीं है, ठीक है, तो है तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम का इनकार है, तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम का इनकार, ठीक है? तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब इस आजिज ने पूरी की पूरी पढ़ाई थी ना, कवर टू कवर, पतली सी किताब थी, ईमान और कुफर, ठीक है? तो उसमें हजरत ने इस वाली बात को एड्रेस किया था कि किसी जो सनद के एतबार से बिल्कुल कंफर्म हदीस है उसका इनकार करते हैं नबी अलैहिस्सलाम का, ठीक है? लेकिन चले, चूंकि हम हैं लॉर्ड मैकॉले के शागिर्द, लॉर्ड मुकाले के शागिर्द, ठीक है, तो लॉर्ड मुकाले के शागिर्द होने के तो फिर ये इनाम है हमारे पास कि हम जो है ना वो जाहिल हैं तो तमाम मामला में जाहिल हैं, ठीक है? क्योंकि पढ़े हुए किसके हैं, जाहिल के पढ़ाए हुए हैं, तो फिर जाहिल का पढ़ाया हुआ क्या होगा, जाहिल का शागिर्द भी जाहिल ही होगा, ठीक है? जाहिर रूहानियत के मामले में तो वो जाहिल था ना, मादियत के मामले में थोड़ा हो सकता है कुछ इल्म इल्म हो उन लोगों के पास, लेकिन रूहानियत के मामले में तो जाहिल था, ठीक है? तो जाहिल का तालिब इल्म जो है वो क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा आपके ख्याल में, जाहिल ही होगा ना, तो इस वजह से हम अपनी जहालत की वजह से बातें कर देते हैं। तो अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा नाम काफिरों में नहीं लिखा होगा अभी तक, ठीक है? वैसे हमारे मशाइख जो है ना वो तौबा के कलमात जो पढ़ाते हैं ना, और ये पिछली कई जनरेशन से जो तौबा के कलमात पढ़ा रहे हैं ना, उसमें अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़वाते, पढ़ो भाई तौबा ए कलमात, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूब, ये नहीं पढ़वाते बल्कि क्या पढ़वाते हैं तौबा ए कलमात के अंदर, आमंतु बिल्लाह, बल्कि नहीं उससे भी पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमंतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, है ना। तो ये सब क्यों पढ़वाते हैं? क्योंकि ईमान से जो बाहर निकल चुके हैं वो वापस ईमान में आ जाए, ठीक है। खाली आम गुनाह करने वालों के लिए नहीं पढ़वाते, वो भी शामिल हो जाते हैं इसके अंदर, कभी आम गुनाह किया है तो वो भी तौबा कर लें, लेकिन जो कुफर का गुनाह कर चुके हैं तो वो भी शामिल हो, वो भी वापस आ जाए। तौबा कलमात ऐसे हैं, और ये सिर्फ नक्शबंदी सिलसिले के मशायख नहीं पढ़ाते, ये कादरिया और चिश्तिया के सिलसिले के मशायख भी पढ़वाते हैं, और सुहरवर्दिया का मुझे पता नहीं है। सही है, तो क्यों पढ़वाते हैं तौबा कलमात? हम कहते हैं ना, ये मुसलमान जो है ये क्यों नहीं वो करते, ललकारते क्यों नहीं है, और उसने ललकार दिया, इन्होंने क्यों नहीं ललकारा? भाई ईमान होगा तो ललकारेंगे ना, ईमान होगा तो ललकारेंगे ना, ईमान ही नहीं तो क्यों ललकारेगा भाई? और दूसरा जो ललकार रहा है वो मुनाफिक है, उसके पास भी ईमान नहीं है, ईमान इसके पास भी नहीं, ईमान उसके पास भी नहीं है, ये मुनाफिक नहीं है, ये खुला काफिर है, वो मुनाफिक है, वो ऊपर से जो है वो मुसलमान बनता है, इस वजह से ललकारता रहता है, वरना है दोनों एक जैसे है। सिर्फ तो खैर नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि काफिर जो होता है वो जहन्नुम के ऊपर वाले दर्जे में होगा, और मुनाफिक जो है वो जहन्नुम के सबसे नीचे वाले दर्जे में होगा, है ना। एक फर्क तो है ना मुनाफिक में और काम काफिर के अंदर, ठीक है। लेकिन दोनों ही ईमान से फारिग हैं, दोनों ही ईमान के बगैर हैं, ठीक है, क्योंकि ईमान तो अकायद से बनता है ना, ईमान खाली ललकारने से तो नहीं बनता ना। लेकिन हमारी बेवकूफ़ी है कि जिनके अकायद का भी हमें पता है, तो उनकी तमाम हरकतों से साबित होता है कि उन्होंने अकायद किया है, हम उनको कहते हैं कि ये कैसे मुसलमान नहीं, ये कैसे, भाई वो नहीं है मुसलमान यार, खामखा इस बहस को खत्म करो, इसको अपने इस बहस को खामखा की तुमने जो है वो टाइम जाया करने का, और कुछ तमाशे बना रखे हैं टाइम जाया करने का, कोई ना कोई तुमने अपना रीजन बनाया हुआ है। बहरहाल, तो ये हदीस का इनकार करने के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। अच्छा, क्या लिखा उन्होंने, ला इल्मी में लोग कह देते हैं तब भी कुफर होगा, ठीक है, इसका जवाब हो गया। अच्छा, आगे अगला क्या मैसेज आया कि ये सब सही है सिलसिले जो अपने नाम लिए, कादरिया चिश्तिया वगैरह वगैरह, क्या फर्क है? यहाँ पे हम तसव्वुफ की तो क्लास कर नहीं रहे हैं कि अब आपको जो है वो चिश्तिया सिलसिले में फर्क बताएं, ठीक है भाई। जिस तरह हनफी शाफी मालिकी और हम्बली में फर्क है ना, ठीक है, लेकिन सारे ही हक पर हैं, उसी तरह से ये चारों जो तसव्वुफ के सिलसिले हैं ये भी हक पर हैं, ठीक है ना। अब मैं बैठ के आपको यहाँ पे तो नहीं सिखा सकता ना कि हनफी और मालिकी में क्या फर्क है, और दूसरा जो है वो अच्छा उसी तरीके से, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, एक और बात भी याद रखें यहाँ पर, कि बेशक कोई हनफी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो बिदतों में कश में मुब्तला हो जाए, ठीक है, तो खाली हनफी के नाम से तो उसका हक पे होना साबित नहीं होता ना, क्योंकि उसने तो बिदतें शुरू कर, जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर तकरीबन सारे ही हनफी हैं, लेकिन मदारों के ऊपर सजदे भी हो रहे हैं, वही हनफी लोग जाके मदारों पे सजदे कर रहे हैं, वही हनफी लोग जो है वो जाकर के उल्टी सीधी जो है वो कुंडे कर रहे हैं, तो तमाशे कर रहे हैं एक दूसरे हर किस्म के, ठीक है ना। तो खाली हनफी हो जाने से तो उनका हक पे होना प्रूव नहीं होता ना, बिल्कुल इसी तरीके से नक्शबंदी का नाम किसी के साथ लगा हुआ है तो इससे ये नहीं प्रूव होता कि हाँ ये अहले हक में से भी है, क्योंकि अगर नक्शबंदी है, नाम का नक्शबंदी है, नाम का जैसे नाम की मुसलमान है ना भाई, पता है ना, लेकिन नाम के मुसलमान होते हैं जो, लेकिन हरकतें क्या क्या होती हैं, उसी तरीके से नाम का नक्शबंदी है, लेकिन अगर हरकतों में बिदतें और शिरकिया किस्म के हरकतें कर रहे हैं, तो फिर नक्शबंदी के नाम से मुतासिर हो जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। और इसी तरह से चिश्ती हो या कादरी हो या कोई भी हो, सिर्फ नाम के ऊपर मत कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, इफ समवन बिलीव्स दैट शियाज आर नॉट काफिर, विल दे रिमेन मुस्लिम, और आर देयर सम एक्सेप्शन फॉर देम एज सम ऑफ वेरी क्लोज वंस आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट देम? आपने तो यार मुझे वॉइस मैसेज भेजा हुआ है आपके यहाँ पे सवाल के, आगे चलें। तो मुफ्ती शफीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लेकिन लफ्ज बेजुल्म को नकेरा लाकर, ठीक है, ये जो लफ्ज जुल्म इस आयत के अंदर आया है, वलम यलबिसू ईमानहुम बेजुल्म, तो ये जुल्म का जो लफ्ज है ये मारिफा नहीं लाए, जिसको अंग्रेजी में डेफिनेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे द लग जाता है ना अंग्रेजी के किसी नाउन के साथ, तो फिर वो डेफिनेट नाउन बन जाता है। उसी तरह अरबी के अंदर जब अलिफ लाम लग जाता है तो फिर वो डेफिनेट यानी मारिफा इसम बन जाता है। यहां पर अलिफ लाम के साथ नहीं लाए बल्कि तनवीन के साथ लाए, यानी दो जेर, इसको तनवीन कहते हैं। दो जेर, दो जबर या दो पेश हो तो फिर उसको तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पे तनवीन के साथ लेकर आए ना, तो ये नकिरा कहलाता है, इनडेफिनेट नाउन। सही है, तो इनडेफिनेट नाउन क्यों लेकर के आए? ठीक है, बिज़ुल्म अगर मारिफा लेके आना चाहते तो फिर क्या होता, बा और फिर अलिफ होता, फिर जो है वो लाम होता और फिर जुल्म। तो वो उसको बिज़ुल्म अलिफ लाम के साथ वो बिज़ुल्म पढ़ते हैं उसको, ठीक है। लेकिन नहीं, बिज़ुल्मिन लेकर के आए, यानी अल्लाह ताला बिज़ुल्मिन इस्तेमाल फरमाया अल्लाह ताला ने। तो अब इससे क्या पता चला कि अरबी जबान के कवायद के मुताबिक अब जो है ना इसके मानी आम हो गए, यानी अब ये किसी खास किस्म के शिर्क की बात नहीं हो रही कि बुत की पूजा ये एक खास किस्म का शिर्क है या कोई एक खास किस्म का शिर्क हो जैसे सूरज की पूजा, नहीं, बल्कि ये क्या हुआ, आम कर दिया, जो हर किस्म के शिर्क को शामिल है, आप हर किस्म के शिर्क को शामिल हो गया। और लफ्ज लम यलबिसु लुबसुन से बना है, लबिसा यलबिसु या लुबसुन, जिसके एक मानी है ओढ़ना या खलत मलत कर देना, ठीक है। ओढ़नी जो होती है लिबास, जिसको ओढ़ा जाता है अपने ऊपर ना, जो कि चिपक जाता है ना आपकी बॉडी के साथ, ओढ़ना भी इसका मानी, और खलत मलत कर देना यानी मिक्स कर देना। और मुराद आयत की यह है कि जो आदमी अपने ईमान में किसी किस्म का शिर्क मिला दे, यानी अल्लाह ताला खुदा ताला को तमाम सिफात कमाल के साथ मानने के बावजूद गैरुल्लाह को भी उनमें से बाज़ सिफात का हामिल समझे, वो इस अमन व ईमान से खारिज है। क्या मतलब कि ये जो फरमाया ना कि उलाइक लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, ठीक है, तो उन्हीं लोगों के लिए अमन है कि जिन्होंने खलत मलत नहीं किया शिर्क के साथ ईमान को, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स, अब देखिए मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह क्यों लिख रहे हैं, खास कर ये बात क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हजरत देख रहे हैं अपने जमाने में, जो कि आज से कोई 50 साल पहले का उनका उनका इंतकाल हो गया, पता नहीं जाके किस ईयर में हुआ था, लेकिन तकरीबन 50-60 साल पहले वो दुनिया में मौजूद थे, और पिछले भी कोई पिछले 150-150 साल का जो जमाना था, तो उसमें लोग ऐसे भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि अल्लाह ताला को सिफाते कमाल के साथ मानते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं। क्या मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को जैसा बताया है वैसा अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ बाज़ सिफात में दूसरों को भी मानते हैं कि भी हाँ उनके पास भी अल्लाह जैसी सिफात है, तो फिर उनके साथ क्या होगा, वो अजाब से नहीं बचेंगे। लहुल अमन उनके लिए नहीं है, लहुल अमन जो है ना ये हम के अंदर वो दाखिल नहीं है, उनको अमन नहीं होगा, ठीक है, उनको अमन नहीं होगा, चलिए वो इस अमन में दाखिल नहीं। अच्छा, इस आयत से मालूम हुआ कि शिर्क सिर्फ यही नहीं कि खुले तौर पर मुशरिक व बुत परस्त हो जाए, खुला तौर पर यानी कहते हैं कि जी मैं मुशरिक हूँ, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस रिलीजन, ठीक है, और आई नाउ वर्शिप आइडल्स एंड आई नाउ वर्शिप जो है वो जीसस, और आई नाउ वर्शिप नाउज बिल्ला किसी फायर समथिंग, ठीक है, तो जरूरी नहीं है इस तरीके से कहें, बल्कि वो आदमी मुशरिक है भी मुशरिक है जो अगरचे किसी बुत की पूजा पाठ नहीं करता और कलमाए इस्लाम पढ़ता है, कलमाए इस्लाम पढ़ता है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है कलमाए इस्लाम, राइट, ये पढ़ता है वो, मगर किसी फरिश्ते या रसूल या किसी वली अल्लाह को अल्लाह की बास सिफात खासा का शरीक ठहराए। ठीक है, किसी पीर साहब को, चाहे जिंदा पीर साहब थे या दुनिया से गुजर गए पीर साहब, या फरिश्ता या रसूल जैसे ईसा अलैहिस्सलाम या उज़ैर अलैहिस्सलाम या किसी और रसूल को, ठीक है, खुदा की सिफात खासा जो है ना, ठीक है, जैसे अर रहमान, रहमान जो है ये खुदा की सिफात खासा में से, रहीम जो है वो रमजान करीम, सॉरी हाँ रहीम किसी आदमी के लिए भी बोल सकते हैं, करीम का जो लफ्ज ये भी अल्लाह ताला की सिफात में से है, लेकिन रमजान करीम भी, राइट, और जो है वो मेरा नाम भी लास्ट नेम जो है वो करीम है, अल करीम नहीं लिखना होता उसके अंदर, या अब्दुल करीम नहीं लिखना होता, काशिफ अब्दुल करीम नहीं, काशिफ करीम, ठीक है। तो सिफात खासा में किसी का किसी और को शरीक ठहरा दे, फरिश्ता कोई बुरी चीज तो नहीं होता, नेक होता है ना, रसूल नेक ही होता है, औलिया अल्लाह नेक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन नेकों को भी शरीक ठहरा देना, और अमलन उनको ऐसा समझते हैं कि गोया खुदाई के इख्तियारात उनके हवाले कर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, उसमें उन अवाम के लिए सख्त तंबीह है, सॉरी, इसमें उन अवाम के लिए सख्त तंबीह है जो औलिया अल्लाह और उनके मजार को हाजत रवा समझते हैं, ठीक है, कि उनकी हाजत जो है ना, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ को जो है वो ये जो मजार में लेटे हुए हैं वो दूर कर देंगे, और अमलन उनको ऐसा समझते हैं कि गोया खुदाई के इख्तियारात उनके हवाले कर दिए गए हैं, ठीक है। शफात के लिए नहीं कि भाई ये शफात कर देंगे हमारी, भाई शफात तो अल्लाह ताला की इजाजत से करेंगे, ठीक है ना, नबी तो नबी, जो कुरान का हाफिज होगा वो भी शफात करेगा, एक बच्चा वो भी 10 लोगों की शफात करेगा, शफात का मसला कोई थोड़ी है कि पीर साहब शफात करेंगे, ठीक है ना, भाई शफात तो कोई भी अल्लाह ताला जिसको इजाजत दे वो कर सकता है, लेकिन यहाँ शफात की बात नहीं हो रही है, हाजत रवाई की बात हो रही है कि वो खुद हाजत रवाई, यानी कि अल्लाह से दुआ करके हाजत रवाई करवा रहे हैं कि अल्लाह आप इसकी मुश्किल को दूर कर दें, भाई वो कौन सी बड़ी बात, वो तो आप भी किसी के लिए दुआ करें अल्लाह उसके हाजत को दूर कर दें, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह से करवाना दुआ के जरिए से नहीं, खुद कर देना दुआ के जरिए, खुद कर देना, खुद कर देना किसी का हाजत को दूर नहीं, ठीक है। तो ये भी इनके अंदर, ऐसे लोग भी इसके अंदर शामिल हैं जो कि कलमा तो इस्लाम का पढ़ते हैं लेकिन ऐसा एतकाद रखते हैं किसी के बारे में, ठीक है। अच्छा अब जो है, एक तो इनका मैसेज आया वो पढ़ लेते हैं कि अल्लाह को मानना और गैर अल्लाह की नफी दोनों जरूरी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह को मानना और गैर अल्लाह की नफी दोनों जरूरी है, तो कलमा जो है ना वो जुबान से पढ़ना एक चीज होती है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो दिलों के हाल के को जानते हैं, तो अल्लाह ताला जानते हैं कि जी जुबान से पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, लेकिन हरकतें इसकी क्या हैं, अल्लाह ताला हरकतों को भी देख रहे हैं, दिल के जज्बात को भी देख रहे हैं कि दिल के जज्बात जो हैं वो इसके क्या हैं, कि उलूहियत के अंदर फलाना मजार वाला भी शामिल है, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो फिर ये हमारी तरह तो नहीं है ना कि बे जुबान से जो सुन लिया तो उसको हम, हमारा तो यही हाल चल रहा है कि सोशल मीडिया पे जो सुन लिया अमन ना व सदक ना, क्योंकि हमें बात ही समझ में नहीं आ रही कि भाई फितरे दज्जाल का जमाना चल रहा है, जो सुनने को आ रहा है वो हकीकत में नहीं होता, ठीक है ना, तलबीस हो रही है, मिक्स किया जा रहा है चीजों को, जो नजर आ रहा है वो हकीकत में वैसा नहीं है, हमें बात ही समझ में नहीं आ रही, ठीक है, इस वजह से हम जो बोलता है कोई आकर के वो हम उसके ऊपर ईमान लेकर के आ जाते हैं, अल्लाह ताला का तो ऐसा मामला नहीं है ना, ठीक है, तो अल्लाह ताला तो अंदर बाहर दोनों को देख रहे हैं और उसके हिसाब से फिर अल्लाह ताला मामला करते हैं, अल्लाह ताला डजंट टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू, एग्जैक्टली। तो क्या लिखा है उन्होंने, हजरत हमने किसी को क्लास ज्वाइन करने को कहते तो वो चाहते तो बोलते वक्त नहीं मिलता, ये बोलते हैं कि सब सुकून से सोना जाता है, सुकून से सुना जाता है, बोलते कि ये सब सुकून से सुना जाता है, तो फिर सुकून तो कब्र में मिलेगा वो भी किसको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा कब्र में सुकून ना, जिसने नेकी की जिंदगी गुजारी होगी उसको कब्र में सुकून मिलेगा, दुनिया में तो सुकून नहीं मिलने वाला। कुरान के लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा, ठीक है, बेसुकूनी के साथ ही निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे भी निकाले लेकिन निकालना पड़ेगा। सुकून सुकून कब मिलने वाला, शैतान सुकून बैठ, शैतान सुकून लेने ही नहीं देगा, मिलने ही नहीं देगा सुकून। सुकून तो मिलना था अल्लाह की याद में, उधर से हमने जो है वो कहा कि नहीं, जब सुकून मिलेगा तब अल्लाह की याद करेंगे, ठीक है, जब सुकून मिलेगा तब अल्लाह को याद करेंगे तब। और कुरान मजीद को सीखना समझना ये अल्लाह की याद में नहीं आता क्या? सिर्फ मुराकबा करना आता है अल्लाह की याद में? नहीं, कुरान सीखना अल्लाह की याद, भाई अल्लाह की याद करेंगे, अल्लाह को जानेंगे पहचानेंगे, कुछ समझेंगे कि क्या करना था अल्लाह के साथ, कैसे नहीं करना था अल्लाह के साथ, तब सुकून मिलेगा। तो अब दुआ करें उनके लिए बस, और बार अपना काम करते रहें, उनको समझाती रहा करें, उनको पहुंचाती रहा करें, कोई वैल्यू वाली चीज जो उनके लिए वैल्यूबल हो ना, उनको फायदेमंद उनके लिए हो, वो उन तक पहुंचाएं, तब उनको सुकून भी मिल जाएगा, फिर वो सुकून निकाल लेंगी क्लास सुनने के लिए। बस समझ में आ रही है? खाली लिंक मत भेजा करें ऐसे लोगों को, बल्कि उनको ऐसा क्लिप बना करके या ऐसे नोट्स या ऐसे पॉइंट्स भेजा करें जिससे उनको बात समझ में आए कि हाँ वाकई ये बात मेरे लिए अहम है, तब यकीन करें वो वक्त निकालेंगे, वो वक्त निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये जो इस वक्त खवातीन की क्लास मिलते हैं लोग मौजूद हैं, ये डांटे सुनने के लिए तो नहीं आए ना यहाँ पे, 122 लोग मौजूद है ना, ये क्यों आते हैं, ये रोजाना क्यों आते हैं, 130 भी आ जाते हैं कभी खवातीन में और मर्दों में, तो मुझे नहीं पता, मुझे काउंट नजर नहीं आ रहा होता फोन स्क्रीन के ऊपर, ये क्यों आ जाते हैं भाई, और कोई काम नहीं है करने को, कोई वैल्यू मिलती है? मेरा तो कोई इसमें कमाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे हजरत ने सही कर ट्राइड किया हुआ, अपना कमाल नहीं, और हम पढ़ भी यही रहे कि अपना कमाल नहीं है कोई, लेकिन क्यों आ रहे हैं भाई, कोई वैल्यू मिल रही है इस वजह से आ रहे हैं ना। आप भी दावत का काम जो है वो इस तरह से करें कि लोगों को दिखाएं क्या वैल्यू है, ये हमारा करने आपका करने का काम है, ठीक है ना, फिर देखिएगा वो कैसे सुकून निकालेंगे फिर अपना आने के लिए। अच्छा, क्या ये औलिया अल्लाह मरने के बाद भी दुआ कर सकते हैं? मरने के बाद भी दुआ कर, लोग कहते हैं कि हम मजार पर उनसे दुआ करवाने जा रहे हैं, भाई अगर दुआ करवाने जा रहे हैं ना तो इसके अंदर फिर उलमा के हैं दलाइल कि नहीं, वो फिर इल्मी बहस आ जाती है। आप उनसे मांगने वालों को तो रोके ना कम, आप मतलब हम तो जिनकी बात करें वो उनसे मांगने वाले, ठीक है, वरना सिमाए मौता के जो मरने वाले लोग, बड़े जो लोग होते हैं ना, उनकी सिमा कि वो सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, एक बहुत बड़ी इल्मी बहस है, और हम उनमें से नहीं है जो कि सिमाए मौता के खिलाफ है, हम उनमें से नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम भी सुनते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को दुरूद शरीफ पहुंचाया जाता है, लेकिन जब वहां पर चले जाते हैं तो वहां पर अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के ऊपर खाली नहीं, हर कब्रिस्तान के ऊपर क्या क्या हमारी दुआ है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, यानी जो सामने खड़ा होता है ना, जो सुन रहा होता है उसको ये करते हैं, या अहलल कुबूर, मुखातब सीगे मुखातब से उनको हम करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर तो उनकी बात हो रही है जिनको जो हाजत रवा समझते हैं कि वो खुद ही हाजत रवाई कर लेते हैं, और खुद जो है ना उनको ये तफवीज कर दिया गया है, ये जो डेलीगेट कर दिया गया है ये वाली अथॉरिटी, अब अल्लाह से मांगने की जरूरत नहीं, अब इन्हीं से मांगो, इन्हीं से मांगो, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता जो है ना, जो हजरत ने लेकिन से बयान किया है, तो अब उसमें हमारे लिए क्या हिदायत, फिर वही बात, कुरान मजीद तो हम बरकत के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बरकत के लिए तो तिलावत कीजिएगा जा करके क्लास के बाद और क्लास से पहले, ठीक है ना, सवाब के लिए क्लास से बाद और कवाद, मतलब बरकत मिलती है पढ़ने से, ठीक है, सवाब भी मिलता है, लेकिन हिदायत से सवाब भी मिलता है, बरकत भी मिलती है और हिदायत भी मिलती है। तो अब तो क्लास में तो हम हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो अब हमारे लिए क्या रेलेवेंस है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जो हैं सारे मर्द और सारे खवातीन के बारे में हदीस इत्मीनान से कह सकता है कि हम तो औलिया अल्लाह को शरीक नहीं ठहराते अल्लाह ताला के साथ, ठीक है, रसूल को भी नहीं और फरिश्ते को भी नहीं, तो फिर हमारे लिए क्या इसके अंदर रेलेवेंस है। तो अब ये पिछली जो क्लास 2-3 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर ही आज सवाल कर चुका है कि हमारे लिए क्या रेलेवेंस है, और माशाल्लाह सही जवाब भी मिल चुका था कि हमारे लिए ये सूरज चांद सितारे जो है ना, ठीक है, जिनके की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे बात करी थी, तो इस वक्त जो है वो सूरज चांद सितारे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, कलोनियल पावर्स, ठीक है, जो कि यूरोप और यूरोप के थोड़ा सा मغلوب हो जाने के बाद, पहले तो यूरोप गालिब कॉलोनियल पावर था, गालिब वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी, अब जो है वो मगलूब हो गई है, गालिब जो है वो अमेरिका हो गया है, लेकिन वो भी सिविल वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ही एक आउटशूट। ठीक है, तो ये सब मिल मिला करके फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन बनते हैं, और इनके फिर जो निज़ाम है, ठीक है, इनके जो बनाए हुए सिस्टम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, चाहे जो है वो सर्वेलेंस का सिस्टम हो, चाहे जो है वो एंटरटेनमेंट का सिस्टम हो, चाहे जो है बैंकिंग का सिस्टम हो, ठीक है, चाहे जो है वो मार्केट कैपिटलिस्ट मार्केट का सिस्टम हो, जो भी सिस्टम हो, सारा उनका बनाया हुआ सिस्टम है। तो इस दौर के सूरज चांद सितारे जो है वो ये हैं। ठीक है, चाइना को आप सितारे कह दें, चाइना भी कोई फर्क नहीं है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, हम पता नहीं समझते हैं चाइना एक अलग सिविलाइजेशन, नहीं, वो पहले कभी होती थी, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन पहले कभी होती थी, वो गुजर गया वो वक्त, अब वो नहीं है, अब वो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसा है। तो उनको सितारे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सितारे बहुत सारे होते हैं ना, तो चाइना की आबादी भी बहुत ज्यादा है, अब तो खैर इंडिया चाइना को क्रॉस कर चुका है शायद आबादी में, लेकिन चाइना स्टिल नंबर टू। ठीक है, तो चाइना को आप सितारे कह दें, यूरोप को जो है वो आप चांद कह दें, और अमेरिका को आप सूरज, हाजा अकबर। ठीक है, तो अब जो ये जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो हम बुत परस्ती नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, पत्थर के बुत और ब्रॉन्ज के बुत, प्लेटिनम के बुत नहीं, हम जो है वो औलिया अल्लाह को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराते, लेकिन हमने खुदा की जो ताकतें हैं, खुदाई ताकतें, ठीक है, जो कि खास अल्लाह ताला के लिए थी, उनमें से बहुत सारी ताकतें जो है वो हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एस्क्राइब कर दी हैं। ठीक है, कि ये जो है वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। ठीक है, और ये मामला है भी ऐसा जैसे कि सूरज चांद सितारों वाला मामला है, क्योंकि जो बुत परस्त थे उनकी तो बेवकूफी जो है वो प्रूफ करना बहुत ही आसान काम है, ठीक है ना, बुतों की पूजा को बेवकूफी प्रूफ कर देना बहुत आसान काम है, वो खड़े खड़े आप कर सकते हैं, लेकिन सूरज चांद सितारे की जो पावर्स हैं, उनका जो तसर्रुफ का उनका मामला है, कि हमारी जिंदगियों में तसर्रुफ होता है, हमारे पूरे जो है वो माहौल में तसर्रुफ होता है, ठीक है, तो उसको तो फिर आपको दलाइल के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो तसर्रुफ है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो पावर्स हैं, राइट, और जो उनकी जो अथॉरिटी है, तो उसको भी जो है वो ऐसे खड़े खड़े आप नहीं कर सकते, उसके लिए दलाइल जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने दलाइल के ऊपर, ठीक है, आपको फैक्ट्स जो है वो इकट्ठे करने पड़ेंगे और उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी ताकत जो है वो बड़ी वाजह है, उनकी ताकत बड़ी नजर आ रही है, तो गोया कि उनको कोई उनको कोई अगर अल्लाह ताला के खास ताकतों में शरीक समझे तो वो शिर्क नहीं होगा, क्योंकि वो वाकई बहुत बड़े हैं, वाकई उनकी जो है वो पावर्स नजर आती हैं, तो अब उनको अल्लाह ताला के सिफात खासा का शरीक ठहराने वाला मुशरिक नहीं होगा, नहीं, मुशरिक तो वो भी होगा, जैसे सूरज चांद सितारों को अल्लाह ताला के साथ इबादत में शामिल करने से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम थी वो मुशरिक थी ना, ये तो नहीं था कि खाली बुतों की परस्तिश की वजह से वो मुशरिक थे और सूरज चांद सितारों की परस्तिश की वजह से वो मुशरिक नहीं थे, नहीं, दोनों वजह से वो मुशरिक थे, लेकिन फर्क सिर्फ दलाइल का है। ठीक है, फर्क क्या है, दलाइल का फर्क है। और दूसरी बात ये भी कि यहां पे जो अब जो हम आयत पढ़ रहे हैं ना, लम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइक लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, ठीक है, क्या मतलब कि जिन्होंने किसी भी किस्म का शिर्क अल्लाह ताला की जात के साथ किया, ठीक है, चाहे पत्थर के बुतों को अल्लाह ताला के साथ शरीक किया, वो भी अमन से एग्जेम्प्ट हो गए, वो भी अमन से एग्जेम्प्ट हो गए, और जिन्होंने सूरज चांद सितारे को अल्लाह ताला के साथ शरीक किया वो भी अमन से एग्जेम्प्ट हो गए, वो भी अमन से एग्जेम्प्ट हो गए, यानी उनको भी अमन नहीं मिलेगा, उनको भी चैन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और वो भी हिदायत वाले नहीं कहलाएंगे, वह मुहतदून से भी वो एग्जेम्प्ट हो गए, दे आर नॉट मुहतदून एट ऑल, ठीक है ना। जिन्होंने आज के दौर में फिर इसको अप्लाई करें, जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अल्लाह ताला के साथ शरीक कर दिया अल्लाह ताला की सिफात खासा में, तो वो अमन से भी खारिज हो गए और वो हिदायत से भी खारिज हो गए, ठीक है। तो फिर क्या, फिर ये कि हमें दोनों किस्म के शिर्क से तौबा करनी पड़ेगी इस हिदायत में वापस आने के लिए और अमन में वापस आने के लिए, ठीक है। अब देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अमन कैसे मिला था, ये खास वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ है, ठीक है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अमन कैसे मिला था, कि कैसे मिला था भाई, बताएं जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमन का वाकया कोई बताए ना जल्दी से। जब तक आप बताएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अमन का वाकया क्या था, क्या सूरत बनी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अमन मिलने की, बहुत सादा सा है, कोई तफसील लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब तक ये आ जाए, एक और बात कर देता है कि जो सूरज चांद, ये जो क्या कहते हैं, बुत होते हैं, ठीक है, जिस तरह बुतों का शिर्क डिसप्रूव करना बहुत आसान काम है, ठीक है, उसी तरीके से बुतों से खौफ को डिसप्रूव करना बहुत आसान काम है, ठीक है, बुतों से खौफ को डिसप्रूव करना भी बहुत आसान काम है। क्या मतलब, कि भाई बुत जो है ना, ये नहीं कर सकते, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने आप को नुकसान से नहीं बचा सकते, ये तो मक्खी नहीं उड़ा सकते, तो ये हम मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है ये, कि भाई ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इस वजह से इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सूरज चांद सितारे, तो भाई ये तो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, अगर सूरज साहब जो है वो नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कोई सूरज को खुदा मानता हो, तो वो ये भी तो कहेगा ना भाई, सूरज देवता जो है वो अगर ज्यादा गर्म हो गए, अगर ज्यादा गर्म हो गए तो फिर हम तो सारे के सारे जल जाएंगे, ठीक है। और चंदा मामू, चांद को तो फिर देवता नहीं, चंदा तो मामू, फिर सारे मामू चांद होते हैं, ठीक है, क्योंकि अम्मी के भाई होते हैं ना, तो इस वजह से उनको तो चंदा ही कहा जाएगा, चंदा मामू, सही है। तो चंदा मामू जो है वो अगर रूठ गए, अगर रूठ गए तो फिर जो है ना वो हमारे समंदरों के अंदर जो एक आती है जो दुनिया को जरूरत है, ठीक है ना, तो फिर तो वो होगा ही नहीं अगर उन्होंने अपना मुखड़ा ना दिखाया हमें, अगर चंदा मामू वाले छोटे खुदा साहब जो हैं वो रूठ गए तो वो हमें अपना मुखड़ा नहीं दिखाएंगे, मुखड़ा नहीं दिखाएंगे 14वीं और 13वीं और 15वीं तारीख को, तो फिर तो हमारे सिस्टम नहीं चलेंगे, फिर तो हिजामा भी जो है वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हिजामे बीजी खत्म हो जाएंगे, फिर तो चंदा मामू भी नाराज हो गए तो मसला हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे डिसप्रूव करेंगे कि नहीं नहीं वो नाराज नहीं होते, सूरज नाराज है, भाई मुश्किल काम है ना इसको डिसप्रूव करना, ठीक है, क्योंकि उनकी ताकत नजर आ रही है, उनका तसर्रुफ नजर आ रहा है, बुतों का कोई तसर्रुफ नजर नहीं आ रहा, बुतों की कोई ताकत नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो इसी वजह से इनका जो खौफ, बुतों का जो खौफ है ना, ये तो सरासर वहम है, वहम, इसको वहम कहा जाएगा, ये क्या तुमने तवहम परस्ती इख्तियार की हुई है कि पत्थर बुत जो है तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन सूरज चांद सितारों का खौफ ये वहम नहीं कहलाएगा खाली, क्योंकि उनकी ताकत नजर आती है ना। बिल्कुल इसी तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो खौफ है ना, ये वहम नहीं कहलाएगा, इसलिए कि ये साइंटिफिकली प्रोवन खौफ है, मुशाहिदों से साबित है ये, कि हाँ भाई मिसाइल है, बम है, और ये है और वो है, सारी की सारी हकीकत इस वक्त असबाब के दर्जे में देखा जाए तो हकीकत ये जो बेवकूफियां मचाई हुई है ना, और हम उसके ऊपर आमन्ना और सदकना कहे चले जा रहे हैं, तो खबर आती है और परेशान हो जाते हैं, ओ वाकई ऐसा हो गया, अल्लाह के बंदे इस वक्त उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि एक परिंद, जिसको उर्दू में मुहावरतन ऐसे समझाया जाता है कि उनकी इजाजत के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। लिखने इस बात को, लिखने इस बात को, ठीक है, खुदा के वास्ते उसको अप्लाई भी कर लिया करें अपनी जिंदगी के अंदर। जब खबरें देख करके परेशान हो जाते हैं ना, तो उस वक्त उस बात को याद रखा करें, इस वक्त उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उनकी इजाजत के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। लिखा, लिख लिया सबने, दिल के गानों से अपने अपने दिलों के ऊपर भी लिखने, हमारे हजरत फरमाया करते थे दिलों के ऊपर लिखे इस बात को, ठीक है ना। यानी जो सो कॉल्ड दुश्मन बने फिरते हैं ना, जो कि उनके साथ लड़ाई करे चले जा रहे हैं, तमाशा है सारा का सारा, खुदा के वास्ते इस बात को समझ गए। कोई नहीं, इस बार ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है ना। तो इनका जो खौफ है, ये वहम वहम नहीं है, इनका खौफ हकीकत है, ठीक है। लेकिन इनसे कौन बचाने वाला? कोई भी नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचा सकता बच्चों, तुमको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं इनसे बचा सकता, कोई भी नहीं इनसे बचा सकता। जिस तरह से सूरज अगर नाराज हो जाए तो कोई भी सूरज से नहीं बचा सकता, चांद अगर नाराज हो जाए तो कोई भी चांद से नहीं बचा सकता, सितारे अगर नाराज हो जाए तो कोई भी सितारे से नहीं बचा सकता, सिवाय किसके? अल्लाह, अल्लाह। बुत से तुम बचा सकते हो अपने आप को, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना इख्तियार दिया है कि तुम अपने आप को बुत से बचा सकते हो। अगर बुत जो है वो थोड़ा सा कुछ उसके अंदर से कोई चूहा उसके अंदर दाखिल हो जाए, वो बुत हिलना जुलना शुरू हो जाए, एक तुम लात मारो उसको, तोड़ दो उस बुत को, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई, बुत को तोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हमें एक महदूद इख्तियार दिया हुआ है, हम उस महदूद इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बुतों को तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? क्या आप अपने महदूद इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए चांद को कुछ कर सकते हैं, सूरज को कुछ कर सकते हैं, सितारों को कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। असबाब यहां पर नहीं है, असबाब फेल हो चुके हैं, असबाब फेल हो चुके हैं। तुम चांद सूरज सितारे को अपने असबाब से, अपनी अकल से, अपनी मेहनतों से शिकस्त नहीं दे सकते। उसी तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन को तुम अपने मेहनतों से, अपनी अकल से, अपनी असबाब से शिकस्त नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। और जो कह रहा है कि मैं दे सकता हूं, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, और आप उसके झूठ को यकीन के साथ उसके ऊपर ईमान लेकर के आए हुए हैं, जिसके ऊपर आपकी पिटाई होने वाली है, आपको सजा मिलेगी इसके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर ईमान लेकर के आ जाते हैं, उसके झूठ के ऊपर, राइट। इनको कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो इनके शर से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, और कोई तदबीर नहीं, अल्लाह को छोड़ के कोई तदबीर। जो तदबीरें कर रहे हैं वो भी अल्लाह ही दे रहा है, बस। इस तरह से अपने तदबीरों को भी इस नजर से देखना कि ये तदबीर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने दी है तो मैं कर रहा हूं, वरना नहीं कर सकता था मैं ये तदबीर, कामिल नफी करके। हत्ता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे करी थी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, कामिल नफी करके, हत्ता के फरिश्ते की मदद से भी इनकार कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिर अल्लाह ताला ने कैसे हिफाजत फरमाई, कैसे हिफाजत फरमाई, जैसे कि ऊपर सवाल किया था और माशाल्लाह सही जवाब दिया, कि चारों तरफ आग थी, चारों तरफ आग थी। आगे आ रही है इसकी तफसीर, तफसीर के अंदर इसकी तफसील आ रही है, पूरी की पूरी आग ठंडी नहीं हो गई थी, चारों तरफ आग लगी हुई थी, लेकिन उस आग की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हो रहा था। हत्ता के जिन रस्सियों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था, उन रस्सियों को आग ने जला दिया था, आग ने रस्सियों को जलाया था, फरिश्ते ने आके रस्सियां नहीं खोली थी, आग ने रस्सियों को जलाया था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिस्म जो है उस आग ने उसको कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो ये जो है ना सूरज चांद सितारे के परस्तिश करने वाले, उसी तरह से आज के जो है ना ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की परस्तिश करने वाले, ये भी आग लगाएंगे और लगाने की मेहनतों में लगे हुए हैं कि बस आग भड़क जाए, ठीक है ना। हकीकी कोई नहीं, खुद ही आग लगाएंगे, जहां से भी लगेगी खुद ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इन सब ने मिलकर के खुद ही आग लगाई थी ना, ये नहीं कि किसी दुश्मन ने आके आग लगा दी थी, नहीं, खुद ही आग लगाई थी इन्होंने। लेकिन जो ईमान वाले होंगे, जिन्होंने लम यलबिसू ईमान हम बिजुल्म उलाइक लहुमुल अमन, उलाइक लहुमुल अमन वहुम मुहतदू, ठीक है, जो कि शिर्क नहीं करते होंगे अपने ईमान के साथ। कलमा तो पढ़ रहे हैं इस्लाम का, जैसे कि मुफ्ती शफी अहमद ने लिखा है कि कलमा तो इस्लाम का पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को जो है वो सिफात खासा में अल्लाह ताला का शरीक ठहराएगा, ठीक है। तो उन अवाम के लिए यानी हमारे लिए सख्त तंबीह है जो अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा समझते हैं और अमल उनको ऐसा समझते हैं कि गोया खुदाई के इख्तियारात उनको हवाले कर दिए गए, ठीक है। तो खाली क्या बात हो रही है यहाँ पर, समझ की बात हो रही है। हम अपनी समझ को ठीक करें, हमारी समझ जो है ना वो शिरकिया समझ है, शिरकिया समझ, ठीक है, हम अपनी समझ को ठीक कर लें, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से अमन भी मिलेगा, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत भी मिलेगी कि क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, कैसे करना है, सब पता चल जाएगा, अल्लाह ताला सब बता देंगे। अल्लाह ताला हमारे हजरत को जजाए खैर अता फरमाए, ऐसा घोल के उन्होंने पिला दिया ना ये वाली बात, ऐसी घोल के पिला दी थी ये वाली बात कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा शेख अता फरमाया, ठीक है। अल्लाह ताला हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।
Recording stopped.